We thank God for this new day that the Lord has given us.
हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए जो उसने हमें दिया है।
As brother Kiran was saying about that verse that we had, the memory verse, do all things without grumbling or complaining.
जैसे भाई किरण उस मेमोरी वर्स के बारे में बता रहे थे, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो।
As he pointed out that the reason for grumbling and complaining, one reason is because I expect something from others. That's the one reason.
और जैसे उन्होंने बताया, कुड़कुड़ाने या विवाद करने का एक कारण ये होता है कि मैं दूसरों से किसी बात की अपेक्षा रखता हूँ।
So it will be that I am not a zero. I am not considering myself as nothing. That is why I have expectations.
और उसका कारण यह है कि मैं अपने आप को शून्य या मैं अपने आप को बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ ये नहीं समझता, इस वजह से मैं दूसरों से अपेक्षा रखता हूँ।
When I come to the place, Lord, I am a zero. I don't deserve anything at all. Then I can be content in whatever situation God allows.
जब मैं उस जगह पे आता हूँ ये जानते हुए कि प्रभु मैं एक शून्य हूँ, मैं किसी भी बात के योग्य नहीं हूँ, तब मैं हर एक परिस्थिति में संतुष्ट और तृप्त हो सकता हूँ।
All that is in my life is Lord, it's your mercy, it's your grace. I'm thankful for it. That's it.
जो कुछ मेरे जीवन में है प्रभु, वो तेरी दया और तेरा अनुग्रह है और मैं उसके वजह से आभारी हूँ।
If I come out of that zero point and I little also think something about myself, then I will start expecting and start grumbling and complaining.
अगर उस शून्य होने के स्थान से मैं थोड़ा भी हट जाऊं और अपने आप को कुछ समझूं, फिर मैं कुड़कुड़ाने लगूंगा और विवाद करने लगूंगा।
Jesus is a perfect example of the one who became nothing.
यीशु मसीह ये एक सिद्ध उदाहरण है एक ऐसे व्यक्ति का जो बिल्कुल शून्य बन गया।
He had lot of difficulties at home, I'm sure of that, but he was at peace at all the time because he made himself of no repute. He had no expectations.
मैं निश्चित हूं कि उसके घर पे बहुत कठिनाइयां थी, पर उसके बावजूद वो हर समय बिल्कुल शांति में था क्योंकि उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया था, उसकी कोई अपेक्षाएं नहीं थी।
That Jesus is the best example for us to follow. May the Holy Spirit show us more of how Jesus lived on this earth.
यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जिसके पीछे हम चल सकते हैं और इसलिए पवित्र आत्मा हमारी आंखें खोले ये दिखाने के लिए कि यीशु इस पृथ्वी पर कैसे चला।
And the following verses after the verse 14, 15, 16th verses is holding fast to the word of life.
और फिलिप्पियों 2:14-15 के बाद जो वचन आता है, 16 वचन, वह लिखा है कि जीवन के वचनों को थामे हुए, 15 वचन हिंदी में।
So it is not just negative that I don't grumble or complain, but hold fast to something, the word of life, the word of God comes as living to me and that is what is in my heart.
और इसलिए ये सिर्फ नकारात्मक नहीं है कि कुछ बातों से मैं दूर रहता हूं, पर जीवन का वचन, परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में आता है।
May God help us to really ask God's grace to walk this way.
परमेश्वर सचमुच हमारी सहायता करे कि हम उससे अनुग्रह मांगे कि हम इस मार्ग पर चल पाए।
We can read from Ephesians 2.
हम इफिसियों के दूसरे अध्याय से पढ़ सकते हैं
8-10,
8-10 वचन।
Says, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. It is only by grace, yeah.
क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया।
इट इज ओनली बाय ग्रेस वी आर सेव्ड थ्रू फेथ।
हम सिर्फ अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है।
So that is by believing in what God in Christ has done for us.
और यीशु मसीह में विश्वास करने के वजह से परमेश्वर ने हमारे लिए ये किया है।
There is no work from our side in that.
इसमें हमारे ओर से कोई काम नहीं था।
But after we are born again, we have some good works that we need to that God has already prepared beforehand that we need to do.
पर हमारा नया जन्म होने के बाद परमेश्वर ने पहले से ही ऐसे काम निर्धारित किए हैं जिन्हें हमें करना है।
We are members of one body.
हम एक ही शरीर के अंग हैं।
And each member, even the smallest member, has some function.
और हर एक अंग, सबसे छोटा अंग भी उसका उसकी एक भूमिका है।
And that function can be a small one or a big one, whatever it is. God decides that.
और वो काम या वो भूमिका छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, उसका निर्णय परमेश्वर करता है।
And God expects that
और परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम इसमें बड़े हर दिन हम उसको सुने।
We listen to him and do as he says. We may not become perfect, but slowly, slowly, we want to learn to do what God wants us to do every day.
हम उसकी बात सुनते हैं और वैसे ही करते हैं। हम शायद तुरंत सिद्ध नहीं होते, पर धीरे-धीरे हम वो जो कहता है उसके अनुसार करते हैं।
Honestly, I am also learning to do this.
ईमानदारी से मैं खुद इस बात को करना सीख रहा हूँ।
Many times I don't listen to God. That's why that work that God had for me that day, that will not be done that day.
Can you repeat?
Sometimes I don't listen to God. That's why what God had prepared that day for me will be not done.
कभी-कभी मैं परमेश्वर को सुनता नहीं और उस वजह से जो काम परमेश्वर ने उस दिन के लिए मेरे लिए तैयार किए थे वो पूरा नहीं होता।
But then we don't get discouraged. We come back, Lord, I want to listen and obey what you tell me.
पर फिर हम इस वजह से निराश नहीं होते। हम वापस आते हैं और हम कहते हैं, परमेश्वर जो भी तू मुझसे कहना चाहता है मैं उसको सुनकर करना चाहता हूँ।
In 1 Corinthians 12,
पहला कुरिंथियों उसके 12वें अध्याय में,
we read from the 14th verse,
14 वचन से आगे हम पढ़ते हैं।
I think recently we had heard this from one brother.
हाल ही में हमने एक भाई से इस वचन को सुना था।
It says about body being one, not one member but many.
और यहाँ लिखा है कि शरीर या देह जो है वो एक ही अंग नहीं है परंतु बहुत से हैं।
Then Paul explains how the human body functions.
और फिर पॉलस ये समझाता है कि मनुष्य का शरीर कैसे काम करता है।
All members work in coordination with the head.
सारे अंग एक साथ मिलकर उस सिर के साथ काम करते हैं।
No member works independently.
कोई भी अंग आजाद होकर स्वतंत्र होकर काम नहीं करता।
In the body of Christ also we are all connected to the head.
मसीह के देह में भी हम सब जो है सिर से जुड़े हुए हैं।
And we listen to the head that is Christ and function.
और हम जो सिर मसीह है उसको सुनते हैं और वैसे काम करते हैं।
No part of the body says to another part that it has no need.
शरीर का कोई भी अंग दूसरे अंग को ये नहीं कहता कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं।
One part of body can have a small function but it is still valued.
शरीर के एक अंग का शायद बहुत छोटी सी जिम्मेदारी या भूमिका है पर उसके बावजूद उसको मूल्य है।
It says in verse 21,
21 वचन में लिखा है,
The eye cannot say to the hand, I have no need of you.
आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं।
Or again, the head cannot say to the feet, I have no need of you.
और न सिर पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं।
It continues by saying that the members of the body which seem weaker are necessary.
और आगे ये भी लिखा है, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है।
The same holds true for the body of Christ.
यही मसीह के देह के विषय में भी बिल्कुल सच है।
The weaker vessels are valued and are necessary and I need to value them.
जो निर्बल पात्र है वो जरूरी है और इस वजह से मुझे उन्हें मूल्य देना है।
Verse 22 it says those members of the body which seem less honorable on these we bestow more abundant honor.
22 वचन में लिखा है, देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं उन पर हम ज्यादा आदर देते हैं।
And the less presentable members have no need of it. And then it says about so when I see anyone who is like has a small function, I value that person.
और इसलिए जब मैं देखता हूँ किसी की बहुत छोटी भूमिका है उस व्यक्ति का मैं मूल्य करता हूँ।
So we sometimes we may think our housewives are like we maybe we sometimes don't value them much.
और कभी-कभी हम सोचते हैं कि जो घर पर होकर स्त्रियाँ काम नहीं करते उनको शायद हम ज्यादा मूल्य नहीं देते।
But God doesn't see it like that. God sees everyone as actually more valuable those who are weaker.
पर परमेश्वर ऐसा नहीं देखता। वास्तविकता में जो निर्बल है उनको वो ज्यादा मूल्यवान समझता है।
Every member in the body has a function.
शरीर के हर एक अंग के पास एक भूमिका है।
Sometimes it can be a very small function but it is important.
शायद वो भूमिका वो काम बहुत छोटा होगा पर वो जरूरी है।
If God wants me to be hidden member in the body,
अगर परमेश्वर चाहता है कि मैं शरीर में एक छिपा हुआ अंग रहूं,
I want to humble myself and accept it.
मैं अपने आप को नम्र करके उसको स्वीकार करना चाहता हूं।
And do my faith faithfully listening to Christ and what he is telling.
और मेरा काम बहुत विश्वास योग्यता से करना चाहता हूं, मसीह को सुनकर वही करना चाहता हूं।
When I learn to be happy in the work that God has called me to do,
जब मैं ये सीखता हूं कि उस काम में मैं खुश रहूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है,
then that will give glory to God.
फिर वो परमेश्वर को महिमा देगी.
I don't want to desire anybody else's function in the church.
कलीसिया में किसी भी और व्यक्ति का काम या भूमिका उसको उसकी मैं चाहत नहीं रखना चाहता.
Then there will be a division in the church and the church cannot be built.
क्योंकि उसके वजह से कलीसिया में एक विभाजन होगा और कलीसिया का निर्माण नहीं हो पाएगा.
In Ephesians 4,
इफिसियों की पत्री उसके चौथे अध्याय में
15 और 16
वचन.
It says, speaking the truth in love, we have to grow up in all aspects unto him who is the head, even Christ.
मालिका वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए.
From whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies according to the proper working of each individual part.
जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है.
Yeah, causes the growth of the body for the building of itself in love.
वो अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए.
Every joint in the body supplies something for the building of the body of Christ.
शरीर का हर एक जोड़ मसीह के देह के निर्माण के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करता है.
We are all part of this body and we can just be a joint in the body.
हम सब इसी शरीर के अंग हैं और हम इस शरीर में सिर्फ एक जोड़ बन सकते हैं.
But we are vital in building of the body.
पर मसीह के देह के निर्माण करने में हम बहुत ही मुख्य है.
God might have made us a hidden member in the body.
परमेश्वर ने शायद इस शरीर में हमें एक छिपा हुआ अंग बनाया होगा.
But we can be a blessing there if we do our part in what we have been called to do.
पर वहां भी हम आशीष बन सकते हैं अगर जो हमारे बुलाहट है वही हम करें तो.
One hidden work in the body can be praying for someone who is in need without anyone knowing about it.
एक छिपा हुआ काम शरीर में ये होता है कि हम किसी के जरूरतों के लिए प्रार्थना करें बिना किसी को बताए.
God delights in doing things hidden many times.
परमेश्वर इस बात में बहुत आनंद करता है कि छिपे हुए तरीके से वो काम करे.
And through people who are also hidden.
और लोगों के द्वारा भी जो छिपे हुए हैं.
So that when the work is done, the glory will go only to God.
ताकि जब काम पूरा होता है वो महिमा सिर्फ परमेश्वर को मिलती है.
If we can be people who are only interested in God only getting the glory and we becoming nothing.
अगर हम ऐसे लोग हैं जिनकी सिर्फ दिलचस्पी इतनी है कि परमेश्वर को महिमा मिले और हम शून्य बने.
Then God can do things through us that will achieve his purposes in our life.
पर परमेश्वर हमारे द्वारा ऐसे काम कर सकता है जो उसके उद्देश्यों को पूरा करे.
We read of many instances in scripture where God used people who are unknown.
हम बाइबल में ऐसे कई घटनाएं पढ़ते हैं जहां परमेश्वर ने ऐसे लोगों का उपयोग किया जो बिल्कुल भी जाने माने नहीं थे.
They just did what was told to them.
उन्होंने बस उतना ही किया जो परमेश्वर ने उनसे करने को कहा.
In some instances we don't know even the names of those people.
कुछ घटनाओं में तो हम इन लोगों के नाम भी नहीं जानते.
Sometimes God used people whose genealogy also we don't know.
कभी-कभी परमेश्वर ने ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जिनके वंशावली भी हम नहीं जानते.
In Genesis 14:16,
उत्पत्ति उसके 14 अध्याय के 16 वचन में,
This is the time when Abraham was returning after defeating those who had taken Lot captive.
ये वो समय है जब अब्राहम वापस आ रहा था लूत को छुड़ाकर.
He brought back all the goods and also brought back his relative Lot with his possessions.
उसने सारे धन को अपने भतीजे लूत और उसके धन को भी वापस लाया.
We read first about Melchizedek in Genesis 14.
हम पहले बार मलकीसदक के विषय में उत्पत्ति उसके 16वें अध्याय में पढ़ते हैं.
Sorry, 18
वचन में.
And then it says in the 18th verse that Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine.
और फिर लिखा है तब शालेम का राजा मलकीसदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाख मधु ले आया.
And he was a priest of God Most High.
वो परम प्रधान ईश्वर का याजक था.
19th verse is he blessed Abraham and said, Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth.
और 19वें वचन में वो उसने अब्राहम को आशीर्वाद देते हुए कहा, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो.
And blessed be God Most High who has delivered your enemies into your hand.
और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है.
If you read the whole Bible, nothing else about his life is mentioned much. Especially in the Old Testament, there is nothing about him much.
अगर हम पूरे बाइबल को पढ़े तो मलकीसेदक के जीवन के विषय में और कुछ भी नहीं बताया गया, विशेषकर पुराने नियम में।
God just wanted him to just deliver one single sentence to Abraham, and that was just the blessing. That was a blessing to Abraham.
और परमेश्वर बस यही चाहता था कि ये व्यक्ति अब्राहम को एक ही वाक्य कहे, और वही अब्राहम के लिए आशीष थी।
He reminded Abraham that it was God Most High who was the possessor of all the goods that he had got after the victory.
उसने अब्राहम को याद दिलाया कि वो परम प्रधान ईश्वर है जो उन सारे धन का मालिक है जो अब्राहम ने उस लड़ाई में जीता था।
And also it was God Most High who delivered his enemies into his hand.
और वो परम प्रधान ईश्वर ही था जिसने उसके शत्रुओं को उसके वश में कर दिया था।
That helped Abraham to give credit to God for everything he had gained that day.
इस बात ने अब्राहम की सहायता की कि उस दिन उसको जो भी मिला था उस बात का श्रेय वो परमेश्वर को दे।
Later we see Abraham repeating what Melchizedek told him, that the Lord Most High was the possessor of heaven and earth.
बाद में हम देखते हैं कि अब्राहम यही बात दोहराता है जो मलकीसेदक ने उसको बताई थी कि परम प्रधान ईश्वर आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है।
Sometimes a single sentence might be enough to be a great help to someone in need.
कभी-कभी एक ही वाक्य पर्याप्त होता है कोई जरूरतमंद की सहायता करने के लिए।
It might help that person in need and lift him up.
वो जो जरूरतमंद है उसकी वो सहायता करेगा और उसको ऊपर उठाएगा।
Or maybe something to warn about some danger.
या आगे आने वाले किसी खतरे के विषय में चेतावनी।
So if we are listening to the Holy Spirit, we can give the right word at the right time.
और इसलिए अगर हम पवित्र आत्मा को सुन रहे हैं तो हम सही समय पर सही शब्द दे सकेंगे।
In Genesis 15:2, we read about another instance of a man who was not much known.
उत्पत्ति उसके 15 अध्याय के दूसरे वचन में हम एक और व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जो ज्यादा जाना माना नहीं था।
We read about Abraham asking God, saying in the second verse, "O Lord God, what will you give me since I am childless?"
और हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर से दूसरे वचन में कहता है, "हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ."
And the heir of my house is Eliezer of Damascus.
और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा।
And Abraham said, "Since you have given me no offspring, one born in my house is my heir."
और अब्राहम ने कहा, क्योंकि तूने मुझे वंश नहीं दिया, जो मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन वही मेरा वारिस है।
Fourth verse says, the word of the Lord came to him saying, this man will not be your heir.
और चौथा वचन कहता है, यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस न होगा।
But one who will come forth from your body, he shall be your heir.
तेरा जो निज पुत्र होगा, और इंग्लिश में लिखा है, जो तेरे शरीर से उत्पन्न होगा वही तेरा वारिस होगा।
We know that Abraham had a son in his old age.
हम जानते हैं कि अब्राहम को अपने बूढ़े होने की अवस्था में एक पुत्र हुआ।
And he was an heir to Abraham.
और वो अब्राहम का वारिस बना।
God fulfilled that promise through Abraham, through Isaac being born.
परमेश्वर ने इस वायदे को पूरा किया इसहाक के जन्म के द्वारा।
Then we see of the work that Eliezer did. In only one chapter of Genesis, we read about Eliezer, what Eliezer did.
फिर हम उस काम को देखते हैं जो एलियाजर ने पूरा किया। उत्पत्ति के एक ही अध्याय में हम उस काम को पढ़ते हैं।
He was given the work of finding a bride for Isaac.
उसको ये काम सौंपा गया था कि इसहाक के लिए वो एक दुल्हन को ढूंढे।
Eliezer might have come to know that he won't be the heir when Isaac was born.
Eliezer को शायद ये बात पता चल गई थी कि जब इसहाक का जन्म हुआ तो वो वारिस नहीं रहेगा।
But that didn't hinder him in doing the work that Abraham wanted him to do.
पर इस बात ने उसके लिए ऐसी कोई बाधा नहीं खड़ी कि वो काम करने के लिए जो अब्राहम ने उससे करने को कहा।
He did the work faithfully and found the right person for Isaac as a wife.
उसने वो काम विश्वास योग्यता से किया और एक सही पत्नी को इसहाक के लिए खोजा।
And if you read that chapter where it is mentioned about that, he kept the focus on Isaac and Rebecca.
और अगर हम उस अध्याय को पढ़े जहां इस घटना का वर्णन है, तो उस पूरे अध्याय में ज्यादा ध्यान इसहाक और रेबेका के विषय में है।
He didn't want Laban to know about him.
वो ये नहीं चाहता था कि लाबान अपने उसके विषय में जाने।
He just said that he was Abraham's servant.
उसने इतना ही कहा कि वो अब्राहम का दास है।
He just did the task that was given to him.
उसको जो काम सौंपा गया था उसने बस वही पूरा किया।
Then if you read, you don't read about him after that, that's it.
और अगर हम आगे देखें तो उसके बाद हम उसके विषय में कुछ भी नहीं पढ़ते।
That servant, the way he worked is the way Holy Spirit works in our lives.
और उस दास ने जिस प्रकार काम किया ऐसे ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है।
He works in a hidden way and he is preparing us to be a bride of Christ.
वो छिपे हुए तरीके से हमारे जीवन में काम करके हमें मसीह का दुल्हन बनाने के लिए तैयार कर रहा है।
Yeah, he is helping us daily to be transformed into Christ's likeness.
वो हर दिन हमारी सहायता कर रहा है कि हम मसीह के जैसे मसीह के सदृश बदल जाए।
1 Kings 17.
पहला राजा उसका 17 अध्याय।
Here we read about a widow in Zarephath.
यहाँ हम सरेपत नगर में एक विधवा के सारपत नगर के एक विधवा के विषय में पढ़ते हैं।
She helped Elijah with food and wine.
उसने एलिया की सहायता की उसको भोजन देकर।
Yes, and she was again an unknown person.
और फिर एक बार वो एक अनजान स्त्री थी।
God asked Elijah to go to Zarephath and commanded a widow there to provide for him.
परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू सरपत नगर में जा और वहां एक विधवा को उसको खिलाने की आज्ञा दी।
And no one might have thought about this widow to help Elijah, but God sees what we don't see.
और शायद किसी ने नहीं सोचा होगा इस विधवा के विषय में एलिया की सहायता करने के लिए, पर परमेश्वर वो देखता है जो हम नहीं देख पाते।
He works in ways we don't understand.
वो ऐसे तरीकों से काम करता है जिनको हम समझ नहीं पाते।
And God used that unknown widow to be a blessing to Elijah.
और परमेश्वर ने उस अनजान विधवा की उपयोग किया एलिया के लिए एक आशीष बनने के लिए।
Sorry, I think I'm not sure about the wine, but I think water and bread. That's what mentioned.
और उस विधवा ने उसको रोटी और पानी दिया।
So that widow was very poor.
और वो जो विधवा थी वो बहुत ही गरीब थी।
But that was not a limitation to God.
पर ये परमेश्वर के लिए इस वजह से कोई बाधा नहीं उत्पन्न हुई।
Elijah told the widow to give him a piece of bread in her hand in verse 11.
और 11वें वचन में एलिया ने उसको कहा कि उसके हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे पास ले आ।
She said in verse 12, as the Lord your God lives, I have no bread, only a handful of flour in the bowl.
और 12 वचन में वो कहती है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा है।
And a little oil in the jar.
और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है।
And behold, I am gathering a few sticks that I may go in and prepare for me and my son that we may eat and die.
और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए।
God worked a miracle there, and the widow's bowl of flour was not exhausted.
परमेश्वर ने वहाँ एक चमत्कार किया और उस विधवा का जो आटे का जो पात्र था वो खत्म ही नहीं हुआ।
And a jar of oil didn't become empty, and she and he and her household ate for many days.
और कुप्पी के में जो तेल था वो भी नहीं घटा और उसने उसके परिवार ने बहुत दिनों तक उसको खाया।
Later we read about Elijah raising the widow's son.
बाद में हम पढ़ते हैं एलिया उस विधवा के स्त्री को फिर एक बार जीवन देता है।
That unknown widow just provided for a prophet and God blessed Elijah as well as the widow.
उस अनजान विधवा ने एक भविष्यद्वक्ता के लिए प्रावधान किया और परमेश्वर ने उसको और एलिया को आशीष दी।
God wants us to be a blessing to others without anyone knowing about it.
परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के लिए एक आशीष बने बिना कोई उसके विषय में कुछ जाने।
It doesn't depend on if we have enough.
ये इस बात पर निर्भर नहीं होता कि हमारे पास पर्याप्त है या नहीं।
God knew the widow's heart and her faith.
परमेश्वर उस विधवा के हृदय को और उसके विश्वास को जानता था।
God needed that faith in order to use that widow to be a blessing.
परमेश्वर को उस विश्वास की जरूरत थी ताकि उस विधवा के द्वारा वो आशीष दे सके।
If you read about in Jesus life,
अगर हम यीशु के जीवन के विषय में पढ़े तो
nothing much is written about his 30 years of his life.
उसके जीवन के पहले 30 वर्षों के विषय में बहुत ही कम लिखा गया है।
The early years before his public ministry, he was not researching, that's very hidden.
और उसकी सार्वजनिक सेवकाई के पहले के जो 30 साल है वो बहुत ही ज्यादा गुप्त है।
God chose to keep it hidden.
परमेश्वर ने ये चयन किया, ये चुनाव किया कि वो वर्ष गुप्त रहेंगे।
It is what we do hidden which is of more value to God.
जो बातें हम गुप्त में करते हैं वही बात परमेश्वर के सामने ज्यादा मूल्यवान होती है।
I am sure Jesus would have been a blessing to many when he was young before reaching 30 years.
मैं इस बात के विषय में निश्चित हूँ कि यीशु मसीह कई लोगों के लिए एक आशीष का कारण हुआ होगा जब वो जवान था।
God what the father told Jesus about Jesus that when he was coming out of the waters of baptism.
पिता परमेश्वर ने यीशु के विषय में तब कहा जब वो बपतिस्मा लेकर उस पानी से बाहर आ रहा था.
This is my beloved son in whom I am well pleased.
ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ.
God was well pleased with Jesus' hidden life and testified about it.
परमेश्वर यीशु मसीह के छिपे हुए जीवन से अत्यंत प्रसन्न था और उस बात की उसने गवाही भी दी.
Jesus might have been a blessing to his brothers and sisters at home.
यीशु मसीह अपने भाइयों बहनों के लिए शायद एक आशीष था अपने घर पे.
As well as to his parents.
और उसके माता पिता के लिए भी.
It says about Jesus in Isaiah 54.
यीशु के विषय में यशाया उसके 54 अध्याय में लिखा है.
50 verse 4.
यशाया 50 उसका चौथा वचन.
The Lord God has given. It says about Jesus that the Lord has given me the tongue of disciples.
और यीशु के विषय में लिखा है प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है.
That I may know how to sustain the weary one with the word.
कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं.
He awakens me morning by morning.
भोर को वह नित मुझे जगाता है.
He awakens my ear to listen as a disciple.
और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं.
Jesus during his earthly life might have lifted up and sustained many weary people with just a word.
यीशु मसीह अपने इस पृथ्वी के जीवन पर उसने शायद कई थके हुए लोगों को अपने शब्द से उठाया होगा.
He might have helped someone in need with a small thing like repairing a table or bench as he was a carpenter.
उसने लोगों की छोटी छोटी तरीकों से सहायता की होगी क्योंकि वो बढ़ाई था कोई टेबल या कुर्सी को रिपेयर किया होगा.
Maybe helping his mother in the household work.
शायद घर के कामकाज में अपनी माँ की उसने सहायता की होगी.
But one thing was different. One thing that we find him is he was doing everything with joy in his heart.
पर एक बात हम पाते हैं कि वो सारी बातें अपने हृदय में आनंद के साथ कर रहा था.
And doing everything as to his father.
और ये सारी बातें इस प्रकार कर रहा था मानो वो अपने पिता के लिए कर रहा हो.
And he would have been a light to all in the house and to many who lived around him.
और अपने घर में जो लोग जीते थे उसके घर में और आस पड़ोस में उन सब के लिए वो एक ज्योति था.
Even during his 3 years of his public life.
और उसके सार्वजनिक जीवन के 3 वर्षों में भी.
We read about many instances where he just went to help one person and came back.
हम कई घटनाओं को पढ़ते हैं कि वो जाकर एक व्यक्ति की सहायता करके वापस आ जाता था.
In one place in Mark 5 it says about he went to a country of the Gerasenes.
और मरकुस उसके 5वें अध्याय में हम एक जगह पढ़ते हैं कि वो गिरासिनियों के देश में गया एक व्यक्ति की सहायता करने के लिए.
And just cast out the demons on one person and returned back.
और वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति से दुष्ट आत्माओं को निकलकर वो वापस लौट आया.
He went for just delivering one person as the Holy Spirit prompted him.
वो वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति के छुटकारे के लिए गया जैसे पवित्र आत्मा ने उसको चलाया. ऐसे भी घटनाएं हैं सुसमाचार में जहां यीशु मसीह कईयों के लिए आशीष का कारण था पर वो नहीं चाहता था कि कोई इस बारे में जाने.
God can use us also as a blessing without anyone knowing about it.
परमेश्वर हमें इसी प्रकार एक आशीष होने में सहायता कर सकता है बिना कोई उसके विषय में जाने.
Even if we don't have a public ministry where we are seen.
यद्यपि हमारे पास कोई सार्वजनिक सेवकाई नहीं है जहां हम बहुत दिखाई पड़ते हैं.
We are always hidden.
हम हमेशा छिपे हुए होते हैं.
We can pray for others whom we are reminded of. That's one thing that we can do.
हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिनके विषय में हमें याद आती है. ये एक बात हम कर सकते हैं.
Prayer is such a help.
प्रार्थना ये बहुत बड़ी सहायता है.
I have had many numerous instances of when my wife has prayed for me and it has helped me.
मेरे साथ ऐसे कई घटनाएं हुई है जहां मेरे पत्नी ने मेरे लिए प्रार्थना की और उस वजह से मेरी सहायता हुई.
We can pray for others whom we remember.
हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिनकी हमें याद आती है.
And ask God to give us a burden for others to pray for them.
और हम परमेश्वर से मांग सकते हैं कि वो हमें एक बोझ दे ताकि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें.
We can also speak a word that God puts in our mouth and can be a blessing to one person.
और हम कोई वचन भी कह सकते हैं जो परमेश्वर हमारे मुंह में डालता है और वो किसी एक व्यक्ति के लिए एक सहायता बनती है.
Maybe it is a small message, but it will be a blessing if you can share that.
शायद वो एक छोटा संदेश है पर शायद वो आशीष देगा अगर हम उसको बांटेंगे तो.
It is not always big things that we need to do to be a blessing.
आशीष का कारण बनने के लिए हमें हमेशा बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं.
It can be small things that we do as God speaks to us and then we can be a blessing to others at home also.
वो छोटी बातें हो सकती है जो हम करते हैं और उसके बाद हम घर में भी आशीष बन सकते हैं।
God wants me to be faithful in the small things that he sends my way and that can help many.
परमेश्वर चाहता है कि जिन बातों को वो मेरे मार्ग में भेजता है उन छोटी बातों में मैं विश्वास योग्य रहूं और वो बात कईयों के लिए आशीष बनेगी।
We can pray with faith for our children that they will follow the Lord.
हम विश्वास से हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वो परमेश्वर का अनुसरण करें।
We can pray with the promise that there is a promise in the word of God that says all your children will be taught of the Lord and the well-being of your children will be great.
हम उस वायदे पर दावा करके प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहता है कि तेरे सारे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनका भविष्य जो है अच्छा होगा।
We can claim this promise by faith for our children and pray for them.
हम इस वायदे का विश्वास से दावा कर सकते हैं हमारे बच्चों के लिए और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं।
If we read about the biography of the life of Susanna Wesley,
अगर हम सुजाना वेस्ली के जीवन के विषय में पढ़े तो
she had delivered 19 children.
उसके 19 बच्चे थे
but 9 including 2 sets of twins died in infancy.
पर उसमें से 9 बच्चे जिसमें 2 जुड़वा भी थे उनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई।
Her life is a challenge to me.
उसका जीवन मेरे लिए एक चुनौती है।
She knew from personal experience that quality one-on-one time with a parent is hard to come by in a family with many children.
वो अपने ही अनुभव से जानती थी कि एक परिवार में जहां बहुत बच्चे होते हैं हर एक बच्चे के साथ अकेले में समय बिताना बहुत कठिन होता है।
Yes, she knew it was very important.
उसके बावजूद वो जानती थी कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
So she set a rotating schedule through with which each of her children spend 1 hour with her alone before bedtime.
इसलिए उसने पूरे दिन को इस प्रकार से अपने समय को बांट दिया था ताकि उसका हर एक बच्चा सोने से पहले कम से कम 1 घंटा उसके साथ बिताए।
Every night, each week, she used to do that.
और हर हफ्ते हर रात में वो यही करती थी।
And even though she had so much of household work, she could train her children. And we know about Charles and John Wesley, how God used them.
और यद्यपि उसके घर में इतना काम होगा उसके बावजूद उसने अपने बच्चों को प्रशिक्षित किया और हम चार्ल्स और जॉन के विषय में जानते हैं कि उन्होंने परमेश्वर ने कैसे उनका उपयोग किया।
In those days, the girls in that place, she used to teach, train those her daughters also.
और उन दिनों में जो लड़कियां थी उसकी बेटियां थी उनको भी उसने प्रशिक्षित किया।
So if you read about her more, it's a really challenging.
अगर हम उसके विषय में ज्यादा पढ़े तो सचमुच वो हमें चुनौती देगा।
So she used God. She used to pray for her children, and we know about Charles Wesley. He had written lot of songs.
और वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती थी और हम जानते हैं चार्ल्स वेस्ली ने बहुत सारे गीत लिखे।
And John Wesley used to preach to crowds.
और जॉन वेस्ली बड़े-बड़े भीड़ों के सामने प्रचार करता था।
And they influenced so many in their generation.
और उनके पीढ़ी में उन्होंने कईयों पर प्रभाव डाला।
Our prayers with faith can impact our children in their generation.
हमारे विश्वास से भरे हुए प्रार्थना हमारे बच्चों का उनके पीढ़ी में एक प्रभाव डालेंगे।
May God help us to be a blessing wherever he places us.
परमेश्वर हमारी सहायता करे एक आशीष बनने के लिए जहां कहीं वो हमें नियुक्त करता है।
Even if no one knows about it.
यद्यपि उसके विषय में कोई नहीं जानता हो।
And let God's name be glorified through our lives.
और परमेश्वर के नाम को हमारे जीवन के द्वारा महिमा मिले।
आमीन
आमीन।